एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम बात कर रहे हैं जर्मेन हेलिगोआ की किताब स्मार्ट सिटीज पर। ये किताब एक बहुत ही कह सकते हैं पॉपुलर आइडिया को करीब से देखती है।
हाँ, ये आइडिया की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शहरों को बेहतर बनाया जा सकता है, ज्यादा कुशल, ज्यादा रहने लायक बनाने का वादा।
बिल्कुल।
और ये आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है ना, दुनिया भर के शहर और अपने भारत में भी कई शहर स्मार्ट बनने की होड़ में हैं। मतलब अखबारों में, सरकारी योजनाओं में, हर जगह इसी का जिक्र है।
हाँ, लेकिन ये किताब हमें थोड़ा रुक कर सोचने को कहती है कि भाई ये स्मार्ट है क्या असल में? क्या ये वाकई सबके लिए उतना ही स्मार्ट है जितना बताया जाता है, या कहानी कुछ और है?
सही बात है, क्योंकि स्मार्ट सुनते ही लगता है कि बस सब बढ़िया ही होगा, पर क्या हकीकत में ऐसा है?
ये किताब इसी चमक दमक के पीछे की सच्चाइयों को, इसमें जो ताकत का खेल है और आम नागरिक पर क्या असर पड़ता है, उसकी छानबीन करती है। तो चलिए हेलिगोआ के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं इन स्मार्ट शहरों की पहेली को।
ठीक है, तो शुरुआत लेखिका से करते हैं, जर्मेन हेलिगोआ।
हाँ, जर्मेन हेलिगोआ अमेरिका की एक जाने मानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनकी खास बात यह है कि वो सिर्फ एक दायरे में काम नहीं करती। वो डिजिटल मीडिया, शहरी अध्ययन और जिसे डिजिटल भूगोल कहते हैं, मतलब कि तकनीक हमारे आसपास की जगहों और समाज को कैसे बदल रही है, इन सबके इंटरसेक्शन पर काम करती हैं।
अच्छा, और यही चीज उनके विश्लेषण को काफी दिलचस्प बनाती है। मेरे ख्याल से वो सिर्फ टेक्नोलॉजी या शहर की प्लानिंग के तकनीकी पहलू नहीं देखती,
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि तकनीक के सामाजिक, सांस्कृतिक और सबसे जरूरी जो इंसानी असर है उस पर ध्यान देती हैं। वो ये समझने की कोशिश करती हैं कि जब शहर में हर तरफ सेंसर और डेटा सिस्टम लग जाते हैं तो हम इंसानों का, मतलब हमारा अपनी जगह से, अपने समुदाय से रिश्ता कैसे बदलता है।
सही कहा, उनका नज़रिया हमें ये देखने में मदद करता है कि ये जो स्मार्ट सिटी की तकनीकें हैं, कैमरा, सेंसर्स, बड़े बड़े डेटा प्लेटफॉर्म्स, ये असल में लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर, उनके शहर को महसूस करने के तरीके पर क्या असर डाल रही हैं। वो टेक्नोलॉजी को कोई जादू की छड़ी नहीं मानती कि बस घुमाई और सारी समस्याएं हल।
बल्कि वो तकनीक के अंदर जो मूल्य छिपे हैं, जो ताकत के समीकरण हैं और जो नैतिक सवाल उठते हैं, उनको कुरेदती हैं, है ना?
हाँ,
बिल्कुल। वो पूछती हैं कि ये स्मार्टनेस आखिर किसके फायदे के लिए है, कौन तय कर रहा है कि शहर को कैसा दिखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और इस पूरी प्रक्रिया में कहीं आम नागरिक की आवाज वो दब तो नहीं रही। तो अब किताब के मूल सार पर आते हैं। आपने कहा कि ये सिर्फ परिचय नहीं, एक आलोचनात्मक विश्लेषण है।
जी हाँ, संक्षेप में कहें तो स्मार्ट सिटीज इस पूरी अवधारणा का एक क्रिटिकल एनालिसिस है। ये किताब स्मार्ट सिटी को सिर्फ तकनीकी तरक्की के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली, अक्सर विवादों में रहने वाला और एक खास विचारधारा से प्रेरित विचार मानती है।
यानी ये सिर्फ गैजेट्स और सुविधाओं की लिस्ट नहीं है, इसके पीछे जो इरादे हैं, जो असर हैं, उनकी गहरी पड़ताल है। तो फिर किताब के मुख्य तर्क क्या हैं? कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो हेलिगोआ हमें समझाना चाह रही हैं?
हाँ, तो किताब में कई पढ़ते हैं, लेकिन मोटे तौर पर तीन मुख्य विचार सामने आते हैं। पहला, स्मार्ट सिटी सिर्फ तकनीकी परियोजनाएं नहीं है, ये गहरे राजनीतिक प्रोजेक्ट्स हैं।
राजनीतिक? कैसे?
ऐसे कि जिस तरह की तकनीक चुनी जाती है, जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, वो सब कुछ खास मूल्यों, प्राथमिकताओं और ताकत के रिश्तों को दिखाता है। स्मार्टनेस की परिभाषा अक्सर कौन तय करता है? बड़ी टेक कंपनियां अपने मुनाफे के लिए, या फिर एक तरह का तकनीकी आशावाद, मतलब ये मान लेना कि तकनीक सब ठीक कर देगी। और ये सोच अक्सर शहर की जो जटिल सामाजिक और राजनीतिक सच्चाइयां हैं उनको नजरअंदाज कर देती है।
ये दिलचस्प है। मतलब तकनीक कभी न्यूट्रल नहीं होती, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई हित होता ही है।
हाँ।
अच्छा, और दूसरा मुख्य विचार?
दूसरा मुख्य विचार है कि स्मार्ट सिटी के जो बड़े बड़े वादे हैं कि शहर ज्यादा कुशल बन जाएगा, ज्यादा टिकाऊ होगा, रहने के लिए बेहतर होगा, और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच अक्सर एक बड़ा फासला होता है। किताब कई उदाहरणों से दिखाती है कि ये महंगे प्रोजेक्ट्स अक्सर आम लोगों के जीवन में, खासकर जो हाशिए पर है, उनके जीवन में कोई खास सुधार नहीं ला पाते, बल्कि कभी कभी तो ये नई समस्याएं खड़ी कर देते हैं।
वादे बड़े और नतीजे या तो छोटे या कभी कभी उल्टे। और तीसरा केंद्रीय तर्क क्या है?
तीसरा और शायद सबसे अहम, किताब ये सवाल उठाती है कि क्या हमारा मकसद सिर्फ शहरों को तकनीकी रूप से स्मार्ट बनाना ही होना चाहिए, या फिर हमें उन्हें ज्यादा समावेशी, ज्यादा लोकतांत्रिक और निवासियों की असली जरूरतों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाने पर जोर देना चाहिए?
ये तो बड़ा सवाल है।
हेलेगोआ दिखाती हैं कि ये स्मार्ट सिटी का विचार एक तरह से एक वैचारिक जंग का मैदान है, जहां शहरी भविष्य की दो अलग अलग कल्पनाएं टकरा रही हैं। एक है टॉप डाउन नजरिया, मतलब ऊपर से नीचे आने वाला, जिसे बड़ी कंपनियां और सरकारें कंट्रोल करती हैं, और दूसरा है बॉटम अप, जो नीचे से ऊपर उठता है, जिसमें नागरिकों की भागीदारी और जरूरतें केंद्र में होती हैं।
ठीक है, तो ये तीन मुख्य तर्क, तकनीक की राजनीति, वादे बनाम हकीकत और टॉप डाउन बनाम बॉटम अप नजरिया, ये हमें स्मार्ट सिटी को समझने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। चलिए अब इन विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। शुरुआत करते हैं स्मार्ट सिटी की इस अवधारणा से और इसके वादे से। जैसा आपने कहा, इसका कोई एक मतलब नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये शब्द अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग समूहों के लिए एकदम अलग मायने रखता है। आप देखिए, IBM या सिस्को जैसी बड़ी टेक कंपनियों के लिए ये क्या है, ये अरबों डॉलर का बाजार है।
हाँ, अपने सेंसर, सॉफ्टवेयर, कंसल्टिंग बेचने का मौका।
बिल्कुल, सरकारों के लिए ये शहर के मैनेजमेंट को ज्यादा कारगर बनाने, संसाधनों को कंट्रोल करने और शायद अपनी छवि चमकाने का एक तरीका हो सकता है।
और आम नागरिकों के लिए, उनके लिए क्या मायने रखता है?
नागरिकों के लिए ये एक मिलाजुला अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को उम्मीद हो सकती है कि भाई बेहतर सेवाएं मिलेंगी, ट्रैफिक जाम कम होगा, सुरक्षा बढ़ेगी। वहीं बहुत से लोगों को डर भी लगता है।
डर? कैसा डर?
अपनी प्राइवेसी खोने का डर, हर वक्त निगरानी में रहने की चिंता, या ये शक कि कहीं ये तकनीक उनके खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं होगी। और हाँ, कुछ नागरिक इसे शहर के शासन में ज्यादा भागीदारी के अवसर के रूप में भी देख सकते हैं, अगर सिस्टम उस तरह से बना हो।
ये जो विचार है कि तकनीक से शहरों को बेहतर बनाया जा सकता है, क्या ये एकदम नया है या इसके तार इतिहास से भी जुड़ते हैं?
किताब बताती है कि ये विचार एकदम नया नहीं है। देखिए, शहरों को ज्यादा तर्कसंगत बनाने, उन्हें एक व्यवस्थित मशीन की तरह चलाने की कोशिशें पहले भी हुई हैं। जैसे मशहूर आर्किटेक्ट थे ले कॉर्बूजिए, उनकी रेडियंट सिटी की कल्पना थी, या फिर साइबरनेटिक्स का विचार था, जो सिस्टम को समझने और कंट्रोल करने का विज्ञान है।
अच्छा,
लेकिन हाल के दशकों में, खासकर डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने के बाद और 2008 की जो आर्थिक मंदी आई थी, उसके बाद बड़ी टेक कंपनियों ने इसे स्मार्ट सिटी के नाम से बहुत जोर शोर से बेचना शुरू किया। जैसे IBM का स्मार्टर प्लैनेट अभियान था, इसे आर्थिक विकास और कंपटीशन बढ़ाने के नुस्खे की तरह पेश किया गया।
और इसे बेचा कैसे जाता है? मतलब क्या वादे होते हैं, क्या मुख्य आकर्षण होते हैं?
मुख्य आकर्षण होते हैं एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी और बेहतर जीवन स्तर। वादे किए जाते हैं कि स्मार्ट तकनीक से ट्रैफिक जैम कम होगा, ऊर्जा बचेगी, अपराध घटेंगे, सरकारी सेवाएं तेज होंगी और शहर निवेश के लिए ज्यादा आकर्षक बनेगा। इसमें अक्सर, जैसा मैंने कहा, तकनीकी समाधानवाद का रवैया हावी रहता है।
मतलब ये मान लेना कि हर मुश्किल का हल तकनीक के पास है।
हाँ बिल्कुल, चाहे वो गरीबी हो या प्रदूषण, लगता है कि बस कोई ऐप बना दो या सेंसर लगा दो और सब ठीक हो जाएगा। जो सामाजिक या राजनीतिक जड़ें हैं समस्याओं की, उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
तो ये तो हुई वादों और अवधारणा की बात। अब आते हैं कि ये काम कैसे करता है असल में। किताब में अर्बन इंस्ट्रूमेंटेशन का जिक्र है, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है?
अर्बन इंस्ट्रूमेंटेशन का सीधा सा मतलब है शहर को ढेर सारे सेंसरों, कैमरों और इंटरनेट से जुड़े उपकरणों, यानी IoT डिवाइसेस से भर देना।
अच्छा,
जैसे
सोचिए आपकी स्ट्रीट लाइट, कूड़ेदान, पानी के पाइप्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, बसें, इमारतें, सब में सेंसर लगे हैं, और ये सेंसर लगातार डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हवा की क्वालिटी, ट्रैफिक का फ्लो, कितनी बिजली खर्च हो रही है, लोग कहाँ आ जा रहे हैं, हर चीज पर नजर रखी जा रही है। ये शहर को एक विशाल डेटा पैदा करने वाली मशीन बना देता है।
बाप रे, मतलब शहर लगातार हमारी नब्ज टटोल रहा है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि कौन सा डेटा इकट्ठा करना है, सेंसर कहाँ लगाने हैं, ये फैसले कौन ले रहा है? क्या ये सिर्फ तकनीकी जरूरतें हैं या इसके पीछे कोई और मकसद भी है? बिल्कुल, यही किताब का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये चुनाव सिर्फ तकनीकी नहीं होते, ये राजनीतिक होते हैं। आप किस चीज को मापना चुनते हैं और किस चीज को नजरअंदाज करते हैं, ये आपकी प्राथमिकताओं को दिखाता है। और फिर सवाल उठता है कि ये सारा डेटा जाता कहाँ है। किताब प्लेटफॉर्म और डैशबोर्ड की बात करती है।
हाँ, मैंने भी सुना है, जैसे रियो डी जेनेरियो का ऑपरेशन सेंटर, बड़ी बड़ी स्क्रीनें जिन पर पूरे शहर का नक्शा और हर तरह के आंकड़े दिखते रहते हैं।
हाँ वही, ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम या अर्बन ऑपरेटिंग सिस्टम का विचार है। वादा ये है कि इससे शहर के मैनेजर्स एक ही जगह बैठकर पूरे शहर की निगरानी कर सकते हैं और तुरंत फैसले ले सकते हैं। ट्रैफिक को रीरूट करना हो, पुलिस या एम्बुलेंस भेजनी हो, बिजली पानी की सप्लाई मैनेज करनी हो, सब कुछ एक डैशबोर्ड से।
सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, शहर का पूरा कंट्रोल एक जगह। लेकिन क्या इसके कुछ खतरे भी हैं?
खतरे कई हैं। पहला तो यही कि ये शक्ति को कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित कर देता है, शहर के मैनेजर और वो कंपनी जिसने वो सिस्टम बनाया है। दूसरा, ये शहर की जो जटिल इंसानी सच्चाई है उसे कुछ सरल से दिखने वाले ग्राफ और नंबरों में बदल देता है। जो चीज़ें आसानी से मापी नहीं जा सकती, जैसे समुदाय की भावना, सांस्कृतिक विविधता, लोगों का आपसी भरोसा, वो इस डैशबोर्ड की दुनिया में अक्सर गायब हो जाती हैं। शहर को सिर्फ एक मशीन की तरह देखा जाने लगता है।
यानी एफिशिएंसी बढ़ाने के चक्कर में हम शहर के मानवीय पहलू को खो सकते हैं। तो ये तो हुई तकनीक की बात। अब आते हैं जमीनी हकीकत और आलोचना पर। क्या ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वादों पर खरे उतर रहे हैं?
किताब के अनुसार अक्सर नहीं। वादों और हकीकत में काफी बड़ा अंतर दिखता है। कई बार अरबों रुपए खर्च करके बड़े बड़े सिस्टम लगाए जाते हैं, लेकिन उनसे उतना फायदा नहीं होता जितना बताया गया था, या फिर वो नई मुश्किलें खड़ी कर देते हैं।
जैसे कि?
जैसे लोगों की निजता का हनन, डेटा सुरक्षा के मुद्दे, या फिर ये कि तकनीक तक सबकी बराबर पहुंच नहीं है, जिसे डिजिटल डिवाइड कहते हैं।
क्या किताब कुछ ठोस उदाहरण देती है इन विफलताओं या चुनौतियों के?
हाँ, किताब कुछ केस स्टडीज का विश्लेषण करती है। जैसे दक्षिण कोरिया का सोंगडो शहर, उसे बिल्कुल शुरुआत से ही एक स्मार्ट सिटी के तौर पर बनाया गया था, लेकिन वो काफी हद तक खाली पड़ा रहा। लोग वहां रहना ही नहीं चाहते थे। इससे अक्सर एक टॉप डाउन योजना की विफलता माना जाता है।
अच्छा।
दूसरी तरफ टोरंटो में गूगल की एक सहयोगी कंपनी थी, साइडवॉक लैब्स। उन्होंने एक पूरा स्मार्ट पड़ोस बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नागरिकों ने इसका इतना कड़ा विरोध किया कि आखिरकार उसे रद्द करना पड़ा। मुख्य चिंताएं थीं कि डेटा पर किसका कंट्रोल होगा और शहर के एक हिस्से का निजीकरण हो जाएगा।
यानी सिर्फ तकनीक लगा देना काफी नहीं है, लोगों की मर्जी, उनकी जरूरतें भी बहुत अहम हैं।
बिल्कुल। और किताब बार्सिलोना जैसे शहरों का भी जिक्र करती है जिन्होंने एक अलग रास्ता अपनाने की कोशिश की है, ज्यादा नागरिक केंद्रित, जहां तकनीक का इस्तेमाल लोगों की भागीदारी बढ़ाने और डेटा पर सार्वजनिक नियंत्रण रखने के लिए किया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि विकल्प मौजूद हैं।
और अलग अलग क्षेत्रों में जो स्मार्ट समाधान लाए जा रहे हैं, जैसे परिवहन, ऊर्जा या सुरक्षा में, उनकी क्या आलोचना है?
किताब इन पर भी सवाल उठाती है, जैसे इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम। ये ट्रैफिक कम करने का वादा तो करते हैं, लेकिन साथ ही वो हर गाड़ी और व्यक्ति की आवाजाही पर बारीक नजर भी रखते हैं।
हाँ, ये तो है।
इसी तरह प्रिडिक्टिव पुलिसिंग है। ये डेटा का विश्लेषण करके बताती है कि अपराध कहाँ होने की संभावना ज्यादा है। दावा है कि इससे अपराध रुकेगा, लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों को और मजबूत कर सकता है और कुछ खास समुदायों की, खासकर अल्पसंख्यकों या गरीबों की गैर जरूरी निगरानी बढ़ा सकता है अगर डेटा ही पक्षपातपूर्ण हो।
मतलब हर स्मार्ट समाधान के साथ कुछ ना कुछ कीमत जुड़ी है। सुविधा या सुरक्षा के बदले हम अपनी निजता या शायद सामाजिक न्याय से समझौता कर रहे होते हैं।
यही दुविधा है। अब देखते हैं कि इसका सामाजिक प्रभाव क्या होता है। लोगों की नागरिकता, उनकी भागीदारी, उनके रोजमर्रा के अनुभव कैसे बदलते हैं।
हाँ, ये जानना जरूरी है। क्या तकनीक वाकई नागरिकों की आवाज को मजबूत करती है जैसा कि दावा किया जाता है?
देखो, दावा तो यही किया जाता है, पर हकीकत ज्यादा जटिल है। कई बार स्मार्ट भागीदारी के तरीके उन लोगों तक ही सीमित रह जाते हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और तकनीकी समझ है।
अच्छा।
इससे समाज में जो पहले से डिजिटल खाई मौजूद है वो और गहरी हो सकती है। जो लोग तकनीक से दूर है उनकी आवाज और जरूरतें अनसुनी रह सकती हैं।
और अर्थव्यवस्था और रोजगार पर क्या असर पड़ता है? क्या स्मार्ट सिटीज सबके लिए आर्थिक अवसर लाती हैं?
कुछ नौकरियां तो पैदा होती हैं, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में, लेकिन ऑटोमेशन और नए सिस्टम के कारण जो पारंपरिक क्षेत्र हैं उनमें नौकरियां जा भी सकती हैं। एक और बड़ा खतरा है जेंट्रिफिकेशन का।
जेंट्रिफिकेशन मतलब?
मतलब जब कोई इलाका स्मार्ट बनता है तो अक्सर वहां प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं, फिर जो पुराने कम आय वाले निवासी हैं वो वहां रहने का खर्च नहीं उठा पाते और उन्हें वो जगह छोड़कर जाना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि ये विकास किसके लिए है? क्या इसका फायदा सिर्फ पढ़े लिखे अमीर वर्ग तक ही सीमित रह जाता है?
और हमारे जीने के एहसास पर, हमारे रोजमर्रा के अनुभव पर क्या असर होता है? क्या हर वक्त कैमरों और सेंसरों की निगरानी में रहना हमें बदलता है?
किताब इस जीवित अनुभव यानी लिव्ड एक्सपीरियंस पर खासी जोर देती है। देखिए, लगातार निगरानी में रहने का एक मनोवैज्ञानिक असर तो होता ही है, एक बेचैनी, एक शक या ये एहसास कि आपकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। फिर एल्गोरिथम है जो हमें बताते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, कौन सी खबर पढ़नी चाहिए। ये हमारी दुनिया को सीमित कर सकते हैं, एक तरह का फिल्टर बबल बना सकते हैं। हेलेगुआ एक महत्वपूर्ण फर्क करती हैं स्थान प्लेस और स्पेस स्पेस के बीच। स्थान वो होता है जहाँ हमारी यादें, रिश्ते और भावनाएं जुड़ी होती हैं। स्पेस सिर्फ एक खाली जगह है जिसे डेटा और नक्शों से भरा जा सकता है। स्मार्ट सिटी अक्सर हमारे प्यारे स्थानों को ठंडे डेटा चालित स्पेस में बदलने का जोखिम उठाते हैं।
ये तो काफी गंभीर चिंता है, निगरानी, असमानता, मानवीय अनुभव का घटना। तो क्या किताब सिर्फ समस्याएं ही गिनाती है या कोई समाधान या विकल्प भी सुझाती है?
नहीं, किताब सिर्फ निराशावादी नहीं है। पहले वो मुख्य आलोचनाओं को स्पष्ट करती है। निगरानी का खतरा, कॉरपोरेट ताकत का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, सामाजिक असमानता का गहराना और तकनीकी समाधानवाद की सीमाएं। मतलब ये मान लेना कि हर सामाजिक राजनीतिक समस्या का हल तकनीक में है।
और इन आलोचनाओं के जवाब में विकल्प क्या है?
विकल्प है ऐसे मॉडल जो नागरिक केंद्रित या सिटीजन सेंट्रिक हों या बॉटम अप हों, यानी तकनीक को ऊपर से थोपने के बजाय उसे समुदाय की जरूरतों और आकांक्षाओं के हिसाब से डिजाइन किया जाए।
यस यस।
इसमें स्थानीय समुदायों द्वारा तकनीक का इस्तेमाल शामिल हो सकता है, जैसे डेट्रॉइट में सामुदायिक वाईफाई नेटवर्क बने, योजनाओं के डिजाइन में नागरिकों की सीधी भागीदारी हो, पार्टिसिपेटरी डिजाइन, और सबसे जरूरी, डेटा पर सार्वजनिक या सामुदायिक नियंत्रण हो। बार्सिलोना का डिसिडम प्लेटफॉर्म इसका एक अच्छा उदाहरण है, जो नागरिकों को शहर के बजट और नीतियों पर वोट करने और बहस करने की सुविधा देता है।
तो संक्षेप में किताब का निष्कर्ष क्या है, भविष्य को लेकर क्या संदेश है?
निष्कर्ष ये है कि शहरों का भविष्य तकनीक के भरोसे तय नहीं है, ये एक राजनीतिक और सामाजिक चुनाव है जो हमें करना है। महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि तकनीक का इस्तेमाल करें या ना करें, बल्कि ये है कि हम कैसी तकनीक चाहते हैं, उसे कौन नियंत्रित करेगा और वह किसके हितों की सेवा करेगी। क्या हम ऐसे शहर चाहते हैं जो सिर्फ कुशल हों या ऐसे जो न्यायपूर्ण और समावेशी भी हों? चुनाव हमारे हाथ में है।
बहुत खूब। चलिए अब इस पूरी चर्चा से निकले कुछ सबसे महत्वपूर्ण संदेशों या सीखों को समेटते हैं। वो 3-4 मुख्य बातें क्या हैं जो श्रोताओं को इस किताब से याद रखनी चाहिए?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और बुनियादी सीख है, तकनीक की राजनीति को समझें। स्मार्ट सिटी की कोई भी तकनीक, चाहे वो सेंसर हो, ऐप हो या एल्गोरिथम, वो कभी न्यूट्रल नहीं होती। वो हमेशा बनाने वालों के मूल्य, उनकी धारणाएं और शक्ति समीकरण दर्शाती है। इसलिए हमेशा सवाल पूछना जरूरी है, ये किसके लिए है, इससे किसे फायदा हो रहा है और किसे नुकसान।
ये बहुत जरूरी है, खासकर जब हमें तकनीक को सिर्फ सुविधा के तौर पर देखने की आदत हो जाती है। दूसरी मुख्य बात क्या होगी?
दूसरी अहम बात है दक्षता और समानता का संतुलन। अक्सर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का मुख्य लक्ष्य होता है शहर को ज्यादा कुशल यानी इफिशिएंट बनाना, लेकिन ये कुशलता किसके लिए है और इसकी कीमत कौन चुका रहा है?
सही सवाल है।
हमें पूछना होगा कि क्या दक्षता बढ़ाने के चक्कर में हम सामाजिक समानता, न्याय और हाशिए पर मौजूद लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। हमारे यहाँ भी भारत में हम अक्सर देखते हैं कि बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट्स में गरीबों या विस्थापितों की आवाज अनसुनी रह जाती है। स्मार्ट सिटी में भी ये खतरा बना हुआ है।
बिल्कुल, हमें सिर्फ स्पीड और सुविधा नहीं बल्कि सबके लिए बराबरी भी देखनी होगी। तीसरा संदेश।
तीसरा है कॉरपोरेट प्रभाव पर सवाल उठाना। देखिए, स्मार्ट सिटी का बाजार बहुत बड़ा है और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इसमें मुख्य खिलाड़ी हैं। उनके हित अक्सर शहर के एजेंडे को तय करने लगते हैं।
हाँ, ये तो है।
इससे सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण और लोकतांत्रिक नियंत्रण के कमजोर होने का खतरा रहता है। भारत में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल को लेकर अक्सर ये बहस होती है कि क्या निजी कंपनी का मुनाफा आम जनता के हित पर भारी पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी में ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है।
और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु,
चौथा, भागीदारी और स्थानीय ज्ञान का महत्व। असली स्मार्टनेस ऊपर से थोपी गई तकनीक में नहीं है, बल्कि नीचे से आती है, मतलब निवासियों की भागीदारी, उनके अनुभव और उनके स्थानीय ज्ञान में। तकनीक को लोगों की सेवा करनी चाहिए, न कि लोग तकनीक की। हमें ऐसे मॉडल चाहिए जहां नागरिक सिर्फ डेटा देने वाले न हो, बल्कि शहर के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं। भारत में पंचायती राज या मोहल्ला सभाओं की जो परंपरा है, वो इसी बॉटम अप सोच का उदाहरण है। इसे स्मार्ट सिटी में भी अपनाने की जरूरत है।
बिल्कुल, यानी असली स्मार्टनेस लोगों में है, ना कि सिर्फ मशीनों में। ये बहुत जरूरी बातें। किताब में जरूर कुछ ऐसी पंक्तियां या विचार होंगे जो इन संदेशों को और यादगार बनाते हैं। क्या कुछ ऐसे विचार साझा कर सकती हैं?
हाँ, हेलिगुआ के विचार काफी सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे एक केंद्रीय विचार है, स्मार्ट सिटीज सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, वे शक्ति, राजनीति और शहर पर अधिकार, राइट टू द सिटी के बारे में है।
शहर पर अधिकार?
हाँ, इसका मतलब है कि ये बहस सिर्फ गैजेट्स की नहीं है, बल्कि इस बुनियादी सवाल की है कि शहर आखिर है किसके लिए, इस पर किसका हक है और इसके भविष्य का फैसला कौन करेगा। ये एक राजनीतिक लड़ाई है एक तरह से।
ये बात बहुत गहरी है। और कोई विचार?
एक और विचार जो मुझे बहुत सटीक लगा, स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियां अक्सर उन समस्याओं का समाधान करती हैं जिनके बारे में निवासियों को पता ही नहीं था कि वे मौजूद हैं, जबकि उन समस्याओं को अनदेखा करती हैं जिन्हें वे जानते हैं कि वे मौजूद हैं।
वाह, ये तो कमाल का अवलोकन है।
इसलिए उनके पास तकनीकी समाधान मौजूद हैं, जो असल दिक्कतें हैं उन पे ध्यान नहीं जाता।
सही कहा। एक और
मजबूत विचार है, असली शहरी बुद्धिमत्ता सेंसर और एल्गोरिदम से नहीं, बल्कि निवासियों के सामूहिक ज्ञान, उनकी रचनात्मकता और आपसी सहयोग से उभरती है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसानी समझ, अनुभव और समुदाय की शक्ति को तकनीक से कम नहीं आंकना चाहिए।
और शायद एक आखिरी जो हमें दिशा दे सके?
हाँ, ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि क्या शहरों को स्मार्ट होना चाहिए, बल्कि ये कि स्मार्ट का मतलब कौन परिभाषित करेगा और उस परिभाषा से किसे फायदा होगा। ये हमें सतही बहसों से हटाकर मूल सवालों, यानी शक्ति, भागीदारी और न्याय पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है।
ये सारे विचार हमें अपने शहरों और उनमें तकनीक के इस्तेमाल को एक नई नज़र से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। अब सवाल यह है कि हम, मतलब आम लोग, इन विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? एक आम नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं?
देखिए, एक आम नागरिक के तौर पर सबसे पहला कदम है जागरूक होना और सवाल पूछना। अगर आपके शहर में कोई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है या आने वाला है, तो उसके बारे में जानकारी हासिल करें।
क्या पूछें?
पूछें इससे कौन सा डेटा इकट्ठा होगा, उसका इस्तेमाल कौन और कैसे करेगा, क्या मेरी निजता सुरक्षित रहेगी, इस प्रोजेक्ट से शहर के गरीब या कमजोर तबकों पर क्या असर पड़ेगा, क्या ये वाकई हमारी किसी बड़ी समस्या का हल है या सिर्फ दिखावा है। आप सूचना के अधिकार RTI का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्थानीय मीडिया में लिख सकते हैं, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल कर सकते हैं।
यानी सिर्फ उपभोक्ता बने रहने के बजाय एक सक्रिय और जागरूक नागरिक बनना। और जो लोग नीतियां बनाते हैं या शहरों की योजना बनाते हैं, उनके लिए क्या सबक है?
उनके लिए संदेश है कि तकनीक पहले, टेक फर्स्ट के बजाय समस्या पहले या लोग पहले का नजरिया अपनाएं। पहले शहर की असली समस्याओं और लोगों की जरूरतों को समझें, फिर देखें कि क्या तकनीक अन्य समाधानों के साथ मिलकर कोई भूमिका निभा सकती है। कोई भी तकनीक अपनाने से पहले उसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का गहराई से आंकलन करें, पारदर्शिता रखें और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करें। सार्वजनिक हित को हमेशा कॉरपोरेट मुनाफे से ऊपर रखें।
और जो लोग ये तकनीक बना रहे हैं, इंजीनियर्स, डिजाइनर्स, टेक कंपनीज, उनके लिए क्या संदेश है?
उनके लिए संदेश है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें। सिर्फ कोड लिखना या डिवाइस बनाना ही काफी नहीं है, उन्हें अपने काम के नैतिक और सामाजिक परिणामों के बारे में सोचना होगा। एक कॉन्सेप्ट है एथिक्स बाय डिजाइन, यानी डिजाइन प्रक्रिया में ही नैतिकता और मूल्यों को शामिल करना।
उन्हें उपयोगकर्ताओं की निजता, सुरक्षा और अधिकारों का सम्मान करना होगा और ऐसे समाधान बनाने होंगे जो समावेशी हों, न कि भेदभावपूर्ण।
और हम सबके लिए एक सामान्य सलाह?
हम सबके लिए सलाह है कि तकनीकी समाधानवाद के बहकावे में आसानी से न आए। हर समस्या का हल ऐप या गैजेट में नहीं होता। अपनी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग और डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी को मजबूत करें। समझें कि डेटा कैसे काम करता है, एल्गोरिदम कैसे फैसले लेते हैं और तकनीक हमारे समाज और जीवन को कैसे बदल रही है।
बहुत ही व्यावहारिक सुझाव हैं ये। तो अंत में इस किताब और हमारी आज की चर्चा से आपकी सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि शहरों की स्मार्टनेस का पैमाना सिर्फ तकनीकी क्षमता या आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए। असली स्मार्टनेस इस बात में है कि शहर अपने सभी निवासियों, खासकर सबसे कमजोर लोगों के प्रति कितना संवेदनशील, न्यायपूर्ण और उत्तरदायी है। तकनीक को इस लक्ष्य को हासिल करने का एक साधन होना चाहिए, न कि खुद ही लक्ष्य बन जाना चाहिए।
और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि शहरी तकनीक पर सार्वजनिक नियंत्रण और लोकतांत्रिक निगरानी कितनी जरूरी है। ये तकनीक हमारे जीवन के हर पहलू को छू रही है, इसलिए इसके नियम कायदे तय करने का अधिकार सिर्फ कुछ कंपनियों या विशेषज्ञों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। भविष्य कैसा होगा ये तकनीक तय नहीं करेगी, बल्कि हम नागरिक के तौर पर अपने चुनावों और अपनी आवाज से तय करेंगे। ये एक उम्मीद जगाने वाली बात है, मुझे लगता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।